ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की दो दिन की यात्रा पर आज वियतनाम के लिए रवाना हो गए। अपने प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि वे 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफनदॉन के निमंत्रण पर वियतनाम जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत एक्ट ईस्ट नीति का दशक मना रहा है। कल नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजुमदार ने बताया कि आसियान भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार हिस्सा लेंगे। इस बीच आसियान के 44वें और 45वें शिखर सम्मेलन और इनसे संबंधित अन्य बैठकें कल लाओस की राजधानी वियतनाम में शुरू हो गईं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लाओस के राष्ट्रपति थामलोन सिसुलित ने आसियान देशों का आह्वान किया कि वे शांति, स्थिरता और सतत विकास के साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करते रहें। लाओस की अध्यक्षता में आयोजित आसियान सम्मेलन के साथ ही 27वां आसियान चीन सम्मेलन और भारत आसियान तथा पूर्वी एशिया सम्मेलन जैसे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा का कल रात मुंबई में निधन हो गया। 86 वर्षीय श्री टाटा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित समाज के विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने रतन टाटा की निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनके जाने से भारत में कॉरपोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ने वाली एक महान हस्ती को खो दिया है। उपराष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा कि रतन टाटा भारतीय उद्योग के महान व्यक्ति थे जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और मवेशी कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रतन टाटा के राष्ट्र के विकास में निस्वार्थ योगदान को याद किया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने लोगों तक सरकारी सेवाओं की निर्बाध पहुंच के लिए डिजीलॉकर के साथ उमंग ऐप को मिलाने की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इससे उपयोगकर्ताओं को एक ही जगह से कई सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। उमंग ऐप सभी एंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध है। डिजीलॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य आवश्यक दस्तावेजों का सुरक्षित क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच अभिकरण एनआईए ने पुदुचेरी के हिजब उत तहरीर एचयूटी से जुड़े मामले में एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बताया कि उन्होंने राज्य के एचयूटी सरगना फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया है। हमीद हुसैन और उसके कई सहयोगियों ने चेन्नई में एचयूटी के राष्ट्र विरोधी विचारों को बढ़ावा देते हुए अलगाववादी विचारधारा फैलाने की साजिश रची थी। पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की कल कोलकाता में राज्य सरकार के साथ हुई बातचीत बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद डॉक्टरों ने इस बातचीत को निराशाजनक बताया। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि उन्हें राज्य सरकार से मौखिक आश्वासन के अलावा कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। मौसम विभाग ने आज तेलंगाना के 27 जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। राज्य के अधिकांश भागों में तेज वर्षा के साथ तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपना मित्र बताया है। ट्रंप ने एक पॉडकास्ट में पूछे गए सवाल के जवाब में ये टिप्पणी की। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान हाउडी मोदी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 2019 में श्री मोदी की ह्यूस्टन यात्रा को शानदार अनुभव बताया। दुनिया भर में आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कल रात दुबई में श्रीलंका को 82 रन से हरा दिया। इधर भारतीय पुरुष टीम ने दूसरे टी20 मैच में बांग्लादेश पर 86 रन की शानदार जीत दर्ज की। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।